ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। रोल्पा के थवांग में भूस्खलन में 10 लोगों की मौत, 3 लापता। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने दिया इस्तीफा। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 5 महीने के बाद लौटे स्वदेश। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा कुरील द्वीप का दौरा किए जाने पर जापान का कड़ा विरोध। अब समाचार विस्तार से। रोल्पा के थवांग गांव पालिका 5 उवा के अंतर्गत आने वाले कोटल 12 में भूस्खलन में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता है। पुलिस के अनुसार मृतकों में से 8 लोगों की पहचान हो चुकी है। बुधवार रात हुई लगातार बारिश के बाद आए भूस्खलन में थवांग गांव पालिका 5 उवा के कोटल 12 निवासी 18 वर्षीय शांति पुन मगर, 60 वर्षीय कमल बहादुर पुन मगर, 75 वर्षीय दल बहादुर पुन मगर, 80 वर्षीय मन खना पुन मगर, 85 वर्षीय हस्तकला रोका मगर, 38 वर्षीय जून कुमारी पुन मगर, 9 वर्षीय असीम पुन मगर और 5 वर्षीय अशोक पुन मगर की मृत्यु हो गई है। यह जानकारी जिला पुलिस कार्यालय रोल्पा के पुलिस प्रमुख एवं पुलिस नायब उपरीक्षक पंच कुमार बाखुले ने दी। उन्होंने बताया कि भूस्खलन में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को आगे के उपचार के लिए बुटवल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार भूस्खलन में कोटल 12 के 9 घर, 1 घूमती किराना दुकान, 2 गोठ और 1 चर्च बह जाने से भारी मानवीय क्षति हुई है। रोल्पा के प्रमुख जिला अधिकारी गंगा बहादुर छेत्री ने बताया कि भूस्खलन में लापता लोगों की खोज तथा बचाव कार्य जारी है। इसी बीच प्यूठान के माड़ी खोला के विभिन्न स्थानों पर 5 अज्ञात शव भी मिले हैं। इसलिए उवा के कोटल 12 गांव के भूस्खलन में लापता लोगों के होने की आशंका की गई है और पहचान की पुष्टि होना बाकी है। यह जानकारी पुलिस ने दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा ने रोल्पा के थवांग 5 कोटल 12 में भूस्खलन में लोगों की मौत तथा लापता होने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। रासोपा के महामंत्री विपिन कुमार आचार्य ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए लापता लोगों की खोज तथा प्रभावित क्षेत्र में तत्काल बचाव, राहत और घायलों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था करने तथा जोखिम युक्त बस्तियों की पहचान कर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। इसी तरह विज्ञप्ति के माध्यम से विपद जोखिम कम करने के लिए पूर्व सूचना प्रणाली को प्रभावी बनाने और तीनों तहों के सरकारों के बीच समन्वय करने का आग्रह किया गया है। सुदूर पश्चिम प्रदेश के प्रदेश प्रमुख नजीर मियां ने प्रदेश सभा सदस्य को नए मुख्यमंत्री पद के लिए दावी पेश करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने आज मुख्यमंत्री पद से दिए इस्तीफा को स्वीकृत करते हुए प्रदेश प्रमुख मियां ने संविधान के धारा 168 के उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमंत्री पद के लिए दावी पेश करने के लिए प्रदेश सभा सदस्यों को आह्वान किया है। यह जानकारी प्रदेश प्रमुख के कार्यालय ने दी। नेपाली कांग्रेस के निवर्तमान सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा लगभग 5 महीने लंबे स्वास्थ्य उपचार के बाद आज स्वदेश लौटे हैं। गत भदौ 24 गते हुए जेंजी आंदोलन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए वह 5 महीने पहले स्वास्थ्य उपचार के लिए सिंगापुर होते हुए हांगकांग पहुंचे थे। स्वास्थ्य उपचार पूरा करने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री देउबा आज दोपहर काठमांडू पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर कांग्रेस के शीर्ष नेता पूर्ण बहादुर खड़का, डॉ शशांक कोइराला, प्रकाश मान सिंह, बिमलेन्द्र निधि, कृष्ण प्रसाद सिटौला, डॉ प्रकाश शरण महत, एनपी साउद, अंबिका बस्नेत, ईश्वरी न्यूपाने, मीन विश्वकर्मा, मोहन बहादुर बस्नेत, उमाकांत चौधरी सहित अन्य नेता लोग पहुंचे थे। राष्ट्रीय सभा ने आंतरिक हवाई सेवा के दायित्व संबंधी विधेयक 2083 पर विचार किया जाए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया है। इससे पहले चर्चा में उठाए गए विषयों को जवाब देते हुए संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पौड़ेल ने कहा कि यूरोपीय संघ की हवाई सुरक्षा सूची से नेपाल को हटाने के लिए विभिन्न सुधार के चरणों में काम हो रहा है और लगभग 6 महीने में कुछ न कुछ परिणाम आने की उम्मीद है। मंत्री पौड़ेल ने कहा कि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने सहित सभी अधिकार अपने पास ही रखे हैं, जिसके कारण भी हवाई सुरक्षा में चुनौती पैदा हुई है। चर्चा में सांसदों ने हवाई सेवा को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से कानून बनाने पर जोर देते हुए आंतरिक हवाई सेवा को सुरक्षित, भरोसेमंद, गुणवत्तापूर्ण तथा जिम्मेदार बनाकर हवाई यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने बताया कि आंतरिक हवाई सेवा के दायित्व संबंधी विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव रखना चाहने वाले सांसद संघीय संसद सचिवालय में संशोधन दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में कानून, न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री शोभिता गौतम ने जानकारी दी कि दलितों के मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए दलितों के हक, अधिकार तथा विकास संबंधी विधेयक का मसौदा तैयार हो चुका है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक भदौ 1 गते सोमवार दोपहर 1:15 पर होगी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत महिला तथा सामाजिक मामला समिति की बैठक में सांसद ने कहा कि जातीय भेदभाव तथा छुआछूत समाज का कलंक है और इसके अंत के लिए शिक्षा तथा जनचेतना का विस्तार किया जाना चाहिए। समिति की आज हुई बैठक में राष्ट्रीय दलित आयोग के कामकाज तथा प्रगति के संबंध में चर्चा के दौरान सांसदों ने कहा कि दलित समुदाय की गरीबी न्यूनीकरण, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को केन्द्र में रखकर बजट निर्माण किया जाना चाहिए। सांसदों ने जातीय भेदभाव के पीड़ितों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा दलित समुदाय के उपनाम के आधार पर होने वाले अपमान, मनोवैज्ञानिक भेदभाव, उपनाम सूचीकरण की जटिलता, नागरिकता नहीं मिलने सहित विभिन्न समस्याओं का अंत करने पर जोर दिया। सांसदों ने रासायनिक खाद्य के स्थान पर जैविक खाद्य के प्रयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति की आज हुई बैठक में सांसदों ने कहा कि किसानों द्वारा रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही है, जिससे खाद्यान्न की कमी होने पर और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने की संभावना है, इसलिए धीरे धीरे जैविक खाद्य के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए। सांसद ने कहा कि सरकार को स्वयं जैविक खाद उद्योग संचालित करना चाहिए और सरकार को प्रस्ताव देकर नहीं बल्कि किसानों के खेतों में होने वाले उत्पादन के आधार पर कृषि अनुदान देना चाहिए। उन्होंने कृषि प्रधान देश के किसानों को खाद की कमी की समस्या से मुक्ति दिलाने पर जोर दिया। बेनी जोमसोम कोरला सड़क परियोजना ने मुस्तांग के छुसांग कागबेनी 10 किलोमीटर सड़क का निर्माण शुरू किया है। परियोजना के प्रतिनिधि सागर सुबेदी ने जानकारी दी कि 28,87,00,000 रुपए की लागत में 2084 अषाढ़ 24 गते तक निर्माण पूरा करने के समझौते के साथ सड़क निर्माण शुरू किया गया है। नेपालगंज उपमहानगर पालिका ने विपन्न, असहाय तथा बेबारी से नागरिकों के लिए नगर के 25 अस्पतालों में 94 निशुल्क शैयाओं की व्यवस्था की है। नेपालगंज उपमहानगर पालिका ने बताया कि भाद्र 1 गते से प्रभावी रूप से सेवा संचालन करने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। लक्षित वर्ग निशुल्क उपचार संचालन तथा प्रबंधन कार्यविधि 2083 के अनुसार उपमहानगर पालिका के अंतर्गत संचालित अस्पतालों में सेवा के लिए संपर्क व्यक्ति निर्धारित कर संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान की प्रधानमंत्री शनाए ताकाइची ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कुरील द्वीप समूह की यात्रा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पुतिन ने इतुरूप द्वीप का दौरा किया जिसे जापान एतोरोफू कहता है। ताकाइची ने कहा कि यह यात्रा जापानी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। जापान इन चार दक्षिणी कुरील द्वीपों को अपना क्षेत्र मानता है जबकि फिलहाल वहां रूस का प्रशासन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शेष से दोनों देशों के बीच इन द्वीपों को लेकर विवाद जारी है। यही विवाद रूस और जापान के बीच अब तक शांति संधि न होने की प्रमुख वजहों में से एक है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रोल्पा के थवांग में भूस्खलन में 10 लोगों की मौत, 3 लापता। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने दिया इस्तीफा। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 5 महीने बाद लौटे स्वदेश। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा कुरील द्वीप का दौरा किए जाने पर जापान का कड़ा विरोध। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।